कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमे गौरकृष्णाय हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो दक्षते गोपेश गोपिका कंस राधा कंस नमस्ते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हा देवी का कुहर जाचे निपत भूमि भटारती अश्या प्रसाद मधुध गंधर अंग श्यामलिम छटा मंदे प्रतिबर जटिजुदर से निन्दारण्य निवासिनं भजिल सत्तामोदरं राधास्कंद निवेशितो जलभुजं ध्यायेन् भक्त्या विहीनापराधलक्ष्यै चित्तास्य कामाभिकर्मणैः कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वन्दे नमस्ते गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय यं प्रभ्रजं तमन्ते तन्ते च दिव्यं दैपायनो विरहकातरयाधिकाय पुत्रेति तन्मयतया सर्वभूतैर्वैवास्मि तवैवास्मि मन्यामि इति तवैवास्मि नजुवामि तयादिना इति वेद्याय राधे तन्मयमा श्रील जीव गोस्वामी की तिरुभाव तिथि है नाबिन भाव तिरुभाव तिथि और किसका है महेश पंडित देखो ना महेश पंडित ना कहा देखो जी गोस्वामी गौड़ीय संप्रदाय के दार्शनिक पक्ष को सिद्धांत को दार्शनिक विचार इत्यादि के द्वारा स्थापित किया। इसके पहले सैद्धांतिक रूप में दार्शनिक रूप में संप्रदाय की कोई विशेष प्रतिष्ठा नहीं। तुम लोग कुछ बोलोगे? बोलो तुम लोग कुछ बोलो तो बोलो देख जी। गोस्वामी का जन्म और बाल्यकाल कहाँ कैसे बीता बोलो जल्दी जल्दी जल्दी। उनका जन्म और बाल्यकाल के संबंध में दो चार सूत्र लाइन बोलो।
276 अपने उन्होंने जन्म बोला है। कहाँ? राम के लिए थोड़ा बोले तो जो राम के लिए ग्रामीण जख्म होते रुक्सनाथन उनको मेरा थकते हैं तक ही होने अवस्थान के लिए अनुपम छे वही आविर्भव तारपरे ঋষিগুরু এর দর্শন করেন নাই, রূপ সনাতনকে ওইখানেই দর্শন করেন নাই। রূপ সনাতন বৈরাগ্য এবং যখন একটু বড় হলেন তখন তিনি শুনলেন যে রূপ এবং সনাতন তাহার যে পিতৃপদ রূপ এবং সনাতন দুজন বৃন্দাবনে চলেন তখন তিনি অধীরে বললেন এবং তিনি একদিন স্বপ্ন দেখলেন যে গৌরসুন্দর এবং নিতান্ত এবং তিনি অত্যন্ত আপন করলেন গৌরসুন্দর এবং নিতান্তের দর্শন এবং তিনি তারপর কিছুদিন পরে তিনি গৌরসুন্দরীর জন্মপিতা গৌর অর্থাৎ মায়াপুর দর্শন করার জন্য খুব এবং কি হয়ে মায়াপুর যখন এলেন তখন নিত্যানন্দ প্রসঙ্গে দর্শন হয় নিত্যানন্দ প্রভু গৌর জীবসিং পাদকে নিয়ে তিনি নিচ্ছেন পুরা তিনি দর্শন করা মায়াপুর ধাম অর্থাৎ নবদ্বীপ যে ধাম দর্শন করা তখন তারপরে শুন তার আগেই খুব সুন্দর অপ্রকট হয়েছে এবং তিনি হা গৌর করে খুব রোদন করতে লাগলেন নিত্যানন্দ প্রভু তাঁকে সমস্ত বৃন্দাবন অভিন্ন যে বৃন্দাবন আছে যে নবদ্বীপ ধাম সেই নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা করান এবং সমস্ত ধাম মহাত্মা তার কাছে বর্ণন করেন এবং বর্ণন করা বলেন দেখুন এই হচ্ছে বৃন্দাবন অর্থাৎ অভিন্ন বৃন্দাবন তো বলেন যে দেখুন কিন্তু তোমার পূর্ব বংশগণ সমস্তই বৃন্দাবনে গিয়েছেন অর্থাৎ তুমি বৃন্দাবনে যাও বৃন্দাবনে গিয়ে তুমি ভজন সাধন করো বৃন্দাবনই হচ্ছে একমাত্র প্রাপ্য বস্তু এবং সাধ্য বস্তু তোমার পূর্বজ এবং সকলেই বৃন্দাবনে রয়েছেন তখন তিনি নিত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন প্রভু এই যদি বৃন্দাবন ধাম হয় তবে কেন আপনি আমাকে আবার এই বৃন্দাবনে ধর্মে যাওয়ার জন্য প্রভু এ সম্পর্কে বলছেন যে যদ্যপি এই বৃন্দাবন ধাম
করাকা পরিচয় গুরু কা পরিচয় আর উনকে ভজন কা পরিচয় হতা ইসলিয়ে রূপ গোস্বামী কো উনকে গুরু কে রূপ মে লিয়া যায় জীব গোস্বামী কা সংক্ষেপ মে বিচার কিয়া থা ইয়ে বতলাও তো তুম বতলাও उनका संक्षेप में विचार बताओ वैष्णव में के जीवन चरित्र में जाति कुल वंश परंपरा का विचार नहीं है कभी सनातन गोस्वामी ने लिखा अपने के लिए कि मैं पुरुषे रिकित हईते मुई से लभिष्ट मोर नाम जैसु ने तार पुल पाप है মুসলমান জাতি কা হো গিয়া মাই ম্লেচ্ছ হো গিয়া মাই জগাই মধাই সে ভি দুরাচারী আপনে লিয়ে বহুত দীনহীন শব্দ কা প্রয়োগ কিয়া বৈষ্ণব লোক ঝুঠ নহীঁ বোলে পরম সুসত্য কহতে এসলিয়ে জব আপনাকে সম্বন্ধ মে কই লিখা তো বহু সে লোক এসা সমঝ লেতে সচমুচ মে ম্লেচ্ছ থে দীনহীন থে আর অছুত থে বহু সে লোক এসা সমঝ সকতে সনাতন গোস্বামী ঝুঠ কেসে লিখেঙ্গে জরুর বাত থি সনাতন গোস্বামী নে যো ইয়ে লিখা ये ठीक लिखा कि गलत लिखा क्या लिखा झूठ को मुठ को अपने लिए लिख दिया तो फिर सत्य है सत्य है तो फिर क्या विचार होगा
प्रेम के ऐसे चरम अवस्था में पहुंचे हुए हैं प्रेम का स्वभाव भी अपने को दीनहीन समझ दीनहीन करा देता है इसलिए ऐसे बस ऐसे कह रहे हैं
उन्होंने जीव के सत्ता को लक्ष्य करके कहा जीवों के लिए बद्ध जीवों के सबके लिए उपदेश संसार में सबसे घृणित कौन है जिसको देह अभिमान है देह में अभिमान है कि मैं ये शरीर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, बनिया हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं सुंदरी हूँ, मैं गुणी हूँ, मैं रूपवती हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं विद्वान हूँ, ये जिसको अभिमान है वो सचमुच में यही अभिमान ही उसके नीचता का प्रमाण है। जहाँ ये सब चीजें होगी वही दीनहीन खुद रहे, जीव को यही सब हुआ था। इसलिए सनातन गोस्वामी ने लिखा, इसलिए कोई समझ न ले कि सचमुच में ऐसे ही बात थी, और कुछ लोग ऐसा समझने लगे उनके व्यवहार से कि सनातन गोस्वामी जगन्नाथ जी के पुरी के मंदिर में नहीं जाते थे, क्योंकि उस रास्ते की धूली हमसे छू करके अपवित्र हो जाएगी, तो भक्त लोग जो मंदिर में जाते हैं अपवित्र हो जाएंगे, इसलिए कभी नहीं जाते थे। बस बहुत दूर रहते थे, हरिदास ठाकुर जी की पर्ण कुटी में आकर के ठहरते और वैष्णवों को दूर से प्रणाम कर लेते, और उनके मंदिर का ऊपर का पताका देख करके और चक्र उसी को प्रणाम करते थे साष्टांग। इसलिए लोग कोई ऐसी धारणा न बना लें कि ये ऐसे मुसलमान थे या नीच जाति के थे, दीन। इसलिए जीव गोस्वामी ने लिखा अपने लघु वैष्णव तोषिणी में, भागवत की टीका के अंत में उनका परिचय दिया, महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे, उच्च कुल थे, महाराष्ट्र बंबई पड़ता है, महाराष्ट्र में कुल है, कर्नाटक कहाँ है, कर्नाटक कहाँ रह, वही उसी के आसपास तो कर्नाटक में उच्च कुल कोटि के भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण। अच्छा, ब्राह्मण थे तो इसे जीव का क्या संबंध, लौकिक परिचय, तो लौकिक दृष्टि से न समझे, पारमार्थिक कोई इसका संबंध नहीं है। नारदरी से यदि निम्न शूद्र कुल में ही जन्म लिया तो क्या हो गया, किंतु लौकिक लोग यही अधिक विचार करते हैं, इसलिए उन्होंने ये किया। और उसमें लिखा कि इनके सप्तम पुरुष बड़े विद्वान, धार्मिक, सैन्य बल इत्यादि में भी प्रचुर थे और राजा थे। पीछे से उनके दो लड़के हरिहर और
कुमार देव,
हरिहर और कौन से रूप, किस रूप रूपाश्रय या जी, रूपेश्वर उनका नाम था सर्वज्ञ, उनके दो पुत्र हुए सर्वज्ञ के, रूपेश्वर और हरिहर। हरिहर शास्त्र में और रूपेश्वर शास्त्र में प्रवणित है, इसलिए हरिहर ने इनको हरा कर इनका पिताजी का राज्य हड़प लिया और इनको देश से निकाल दिया। तो ये लोग इनके पिता ने फिर रूपेश्वर के पुत्र पद्मनाभ और पद्मनाभ से चतुर्थ उनके पंचम पुत्र मुकुंद देव ये आ गए नई हाटी चुचुड़ा के पास और उनके पुत्र पद्मनाभ हुए मुकुंद देव के कुमार देव और कुमार देव के पांच पुत्रों में सनातन रूप और बल्लभ हुए। इनके पांच पुत्र थे, दो बड़े बड़े और इसके बाद में ये सनातन गोस्वामी का बालकपन का नाम था
अमर
अमर और संतोष संतोष और अरूप गोस्वामी का नाम अमर और अनुपम गोस्वामी का अनुपम ही था पीछे से बल्लभ हुआ। ये लोग बचपन से ही बड़े विद्वान थे और इसके बाद में रूप सनातन ने शादी किया कि नहीं ये कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। उन लोगों ने शादी नहीं, सब भाइयों में केवल श्री बल्लभ या अनुपम की शादी हुई और ये तीनों हुसैन शाह बादशाह के यहाँ नौकरी करते थे, कोई प्रधानमंत्री कोई प्राइवेट सेक्रेटरी रूप गोस्वामी और ये थे अर्थमंत्री अनुपम। अनुपम के पुत्र थे, महाप्रभु जब वहाँ आए तो उसे उनकी भेंट हुई थी। रूप गोस्वामी ने बचपन से ही इनको पुत्र ही के समान समझ करके लाड प्यार दिया और महाप्रभु के चरणों में इनको लेटा दिया। महाप्रभु जी ने इसके मस्तक पर हाथ रख करके इस पर आशीर्वाद किया। उस समय बहुत छोटे बालक थे। इसके बाद में जीव गोस्वामी पढ़े लिखे, पश्चात में जब रूप गोस्वामी चले गए और अनुपम पहले छोड़ दिया, वही बचपन में इसके बाद बाद में उन्होंने वहीं पर व्याकरण इत्यादि शास्त्र पढ़ा। धनी मानी तीन भाइयों में से एक पुत्र कितने लाड़ प्यार से पले होंगे, अथा धन संपत्ति थी वैभव था, थोड़े दिनों में ही समस्त विद्याएं व्याकरण न्याय और सब कुछ विद्याएं उन्होंने घर में अल्प उम्र में ही पढ़ा। जब रूप गोस्वामी और उनके पिता अनुपम जी घर छोड़ करके चले तो ये लोग पहले वहाँ पर गए घर में और घर के धन संपत्ति को विभाग कर दिया, आधी संपत्ति दान कर दिया इधर उधर और आधी का आधी घर वालों को दिया और आधी में से आधी लेकर के वहीं पर बनिए के पास में रख दिया जहाँ सनातन गोस्वामी थे, यदि जरूरत हो तो किसी प्रकार से उसको दे करके चले। घूस देना और लेना दोनों ही खराब है ना, किंतु भक्ति के लिए यदि हो तो वो गर्हित काम भी अच्छा है, चोरी करना झूठ बोलना खराब है, किंतु वो वसुदेव जी ने झूठ बोला, झूठ बोल करके कृष्ण को यहाँ से ले गए गोकुल और झूठ बोले जी हमको लड़की हुई, ये भी झूठ बोला उनके जैसे महात्मा। फिर सनातन गोस्वामी के लिए रख दिया जो घूस दे करके और वो जेल खाने से किसी प्रकार से छूट करके चले आए थे। तो पहले जब ये गए तो उस समय में वहाँ पर पढ़ रहे थे तो सब संपत्ति दे लेकर के और इसकी पढ़ने की व्यवस्था सब ठीक करके चले आए। उसको चकला बाकला में रख दिए, क्योंकि ये तो दोनों भाई चले आए और वो भी आने वाले हैं, सनातन गोस्वामी जानते थे, इसलिए हमारे वंश में केवल यही एक लड़का है, इसको लड़क लाड़ प्यार के साथ में वैभव के साथ में रखा। अथा संपत्ति, कितना कोमल स्वभाव का ये लड़का होगा, इसी से समझो। जब वो बड़ा होने लगा तो धीरे धीरे वो कृष्ण और राधा कृष्ण की मूर्ति रखता और उन्हीं की पूजा करता, माला बनाता चढ़ाता, उसी समय में पूजा करते करते ध्यानस्थ हो जाता और कोई खेल नहीं खेलता बच्चों के साथ। जब और थोड़ा सा बड़ा हो गया तो सनातन गोस्वामी तो चले आए, वो भी अब वो 12-13 वर्ष 14 वर्ष की उम्र में नवदीप आए। उस समय नवदीप के सारे लोग, महाप्रभु जी चले गए, अप्रकट हो गए, इसलिए सब लोग छोड़ करके नवदीप चले गए। सुन्न शान अच्छा नहीं लगता था उनको, सब समय स्मृति लगी रहती, महाप्रभु जी घाट में स्नान करते, मैया यहाँ थी, ये था वो था, सब देख करके दुखी हो जाते थे, इसलिए श्रीनिवास आचार्य छोड़ करके चले आए, ये छोड़ करके चले गए, अद्वैताचार्य छोड़ करके शांतिपुर में चले गए, कोई कहाँ चला गया, नवदीप उजाड़ हो गए। तो श्रीवास के आंगन में उस समय में 2-4 दिन पहले ही नित्यानंद प्रभु खड़गस से आए थे, तो वहीं पर ये पहुंचे। बस नित्यानंद प्रभु जी बड़े प्रसन्न हुए उस छोटे से सुंदर बालक को देखकर और अपना चरण उसके सिर पर रख दिया। मैं तो तेरे लिए ही आया था, मैं तो खड़गस में था। फिर उसको महाप्रभु की लीला स्थली सबको दर्शन कराया, नौ दीपों का कौन कौन पार, कहाँ कहाँ पर महाप्रभु जी की कौन सी लीला, और बोले जो तुम चले जाओ रूप सनातन के पास में वृंदावन, प्रचुर कृपा की। इसके बाद में वो चले आए। रास्ते में काशी में सार्वभौम भट्टाचार्य जी के शिष्य मधुसूदन वाचस्पति थे, वो वेदांत का अध्ययन कराते थे, वेदांत का अध्ययन मैंने शंकर भाष्य नहीं, उसमें शंकर भाष्य प्रसिद्ध था, ये महाप्रभु जी ने शंकर भाष्य का खंडन करके सार्वभौम भट्टाचार्य को जो पढ़ाया था, और रूप सनातन को महाप्रभु जी ने वेदांत की शिक्षा में ही जो सब उपदेश दिए थे प्रयाग में और वाराणसी में, वो सबको समझ बूझ करके पढ़ करके बड़े विद्वान आदमी थे, वहीं पर पढ़ाते थे। सार्वभौम भट्टाचार्य ने देखा कि महाप्रभु को जाएंगे वृंदावन, इसलिए वाराणसी में महाप्रभु जी के लिए कोई क्षेत्र बनाना चाहिए, इसलिए पहले से समझ बूझ करके उनको रखा था, वहीं पर पढ़ाते थे। इसलिए जीव गोस्वामी वहाँ गए, कह दिया होगा नित्यानंद प्रभु जी ने या कोई और कहा होगा, नहीं तो परिचय कहाँ से पाते, इसलिए जा करके उनके यहाँ गए और उन्होंने वो सब वेदांत भक्ति परक वो सब इनको पढ़ाया, शंकर भाष्य भी पढ़ाया। बिना शंकर भाष्य पढ़े तो उसका खंडन नहीं हो सकता है, दोनों पक्ष जानना चाहिए, स्वपक्ष और प्रतिपक्ष, इसलिए उनको सब अच्छी तरह से समझ करके पढ़ करके और तब वहाँ पर गए। रूप सनातन जी ने, रूप सनातन गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को रूप के चरणों में दे दिया। उन्हीं के पास में दामोदर जी के घेरा में जहाँ पर कि उनकी कुटी थी वहीं पर उनको पास में रखने लगे जी गोस्वामी। वहाँ तब तक रूप गोस्वामी ने जितने भी ग्रंथ लिखे थे और लिख रहे थे सनातन को वो पढ़ाने लगे, उनको जीव गोस्वामी को पढ़ाने लगे। एक दिन की बात है कि जिस समय वो पढ़ा रहे थे इतने में खूब तेजस्वी कोई ब्राह्मण है वयस्क का, जो रूप तुम आजकल क्या लिख रहे हो, तो समझो जो उनकी उम्र कितनी होगी जो उनको रूप कहा होगा, विद्वान भी होंगे, ये वल्लभाचार्य थे, रूप गोस्वामी को जानते थे पहले से ही। कैसे जानते थे? प्रयाग में महाप्रभु जब गए थे तब वहां पर कैसे पहुंच जाएंगे? वहां पर उनसे परिचय थी। तो कहा जी रूप क्या लिख रहे हो? महाप्रभु से उम्र में बहुत बड़े थे। महाप्रभु जी जब 25-26 वर्ष के होंगे, 26-27 वर्ष के, तो ये थे करीब करीब 70-80 वर्ष के, ऐसे उम्र में थे। और द्वैताचार्य के समकक्ष उम्र में थे, इसलिए रूप गोस्वामी उनके पुत्र के उम्र के थे या उससे भी छोटे। उन्होंने रूप क्या ग्रंथ लिख रहे हैं? तो सपिचाते हुए उन्होंने कहा जी भक्ति रसामी सिंधु, कहीं उसमें भक्ति रसामी सिंधु लिखा, ठीक है लिख लो। तो मैं उठा लिया और थोड़ा सा पेज उलाट लिए, ठीक है मैं इसको शुद्ध कर दूंगा जो गलतियां हैं। जी गोस्वामी पंखे चला रहे थे उनको, रूप गोस्वामी को ताल पत्र का पंखा ना? पहले ये सब नहीं होने से शिष्यों को सेवा करने का सुयोग था, आजकल शिष्यों को सेवा करने का विशेष सुयोग नहीं। कुछ दिनों के बाद में पैर दबाने वाला एक मशीन निकल आएगा, बस वो भी नहीं हो, रसोई बनाने का कोई कल टिप देंगे वो भी हो जाएगा, सेवा दूर होती चली जाएगी। ये शिष्य और गुरु का संबंध ही नहीं रहेगा कुछ दिनों के बाद में। अभी अभी दिख पड़ता है कुछ कुछ, पहले जैसा तो है नहीं किंतु कुछ कुछ दिख पड़ता है, ये भी नहीं रहेगा। तो वो जीव गोस्वामी पंखे चला रहे थे तो उन्होंने सुन लिया, इनसे रहा नहीं गया। थोड़ी देर में ये भी एक कलश उठा करके वहां पर पहुंच गए जमुना के तीर पर। बोले जी गोसाई जी आपने ये जो कहा जो भक्ति गोस्वामी सिंधु जो गोस्वामी लिख रहे हैं उसमें संशोधन कर देंगे, तो आपने किस जगह पर भूल देखी? ये तुम क्या समझेगा बच्चा, व्याकरण पढ़ा है तो थोड़ा सा देखा है तो तुम क्या समझे, नहीं थोड़ा सा बतलाई तो दीजिए। बस आरंभ हो गया तर्क, उन्होंने कोई भूल दिखाई उसमें से और बस बस दोनों में तर्क छिड़ गया। जी गोस्वामी ने उसको ठीक स्थापित किया, वो उसका खंडन नहीं कर सके, निरुत्तर हो गए। बोले वाह तुम बहुत अच्छा बुद्धि का लड़का है। तो इसके बाद में वो लौट आए जी गोस्वामी उनसे, रूप गोस्वामी से पूछा वो जो बालक तुमको जो पंखा कर रहा था वो कौन था? बड़ा मेधावी लड़का है, तो बहुत बुद्धिमान और शास्त्रज्ञ है। तो जी उन्होंने कहा बड़ी दीनता के साथ में हाथ जोड़ करके उनको कहा ये हमारे छोटे भाई का लड़का है और मेरा शिष्य भी, यही बात नहीं बहुत बुद्धिमान विद्वान लड़का है, प्रतिभाशाली लड़का, भविष्य में बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति है। तो वो चले गए। तो जी रूप गोस्वामी ने सोचा ये कुछ गड़बड़ किया इसे। तो वो पानी जब लेकर के आए कलश से तो उन्होंने पूछा तुम इतना धैर्य तुमको नहीं है, ये वृद्धा विद्वान ब्राह्मण और हमारा संशोधन के लिए हमारा मंगल करने के लिए आए, अब तुम सह न सके और उनसे बात विवाद कर दिया, तुम्हारा स्वभाव कुछ उग्र है, घर जाओ पूर्वतर में जाओ, पूर्व देश में, पूर्व देश का घर नहीं कहा, पूर्व देश में चले जाओ। जी गोस्वामी उनकी आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं कर सकते थे। यदि कोई गुरु के आदेश को उल्लंघन करता है तो कभी परमार्थ में जा ही नहीं सकता। यदि कोई व्यक्ति कहता है जी गुरु जी मैं आप तो हमें जानते नहीं हैं, आप हमें जानते नहीं है कि मैं कैसे कैसे रहता हूँ और क्या करता हूँ, तो ये क्या हुआ? तब तो फिर गुरु का भाव रहा कहा। एक आदमी कल कह रहा था, आप तो जानते नहीं हमें जब मैं क्या क्या करता हूँ, कैसे रहता हूँ। कहे तुमने सब चौपट कर दिया। गुरु जान करके भी और भगवान जैसा भाव नहीं आया। जब इतना ही भाव नहीं आया तो फिर क्या हुआ? एक मध्यम अधिकारी भी नाड़ी पकड़ करके दे करके बतला सकता है जो क्या। एक आदमी वैद्य के पास में गया ना, साधारण वैद्य के पास। उसने देखा जी ये दुबला पतला है, खूब दुबला पतला ना? तो उसकी उसको नाड़ी तो झूठ मूठ को देखता है, वो पहले जानता है इसका पेट खराब। नाड़ी देखता कहता तुम्हारा हजम नहीं होता है ठीक से, बात ठीक है ना? अच्छा ये तुमको यहाँ पर गैस बनती है? नाड़ी कैसे और आंख बंद करके देख रहा है और जितने जब उससे होते हैं ना वो सब कुछ बतला गया। अरे ये तो सब जान लिया। वैसे मध्यम अधिकारी एक वैद्य है, हम देख करके बतला देंगे जब क्या क्या परमार्थ में कमियां हैं किस व्यक्ति को देख करके ही चेहरे से, और हमसे जो ऊंचा होगा वो तो हम लोग का भी नाड़ी नक्षत्र देख करके बतला देगा। इसलिए ये कहना सर्वथा ये ऐसा कभी मत समझना गुरु जी हमारे जैसे एक मनुष्य है, हमारे मन की भावनाओं को नहीं जानते हैं। उनको जो जानना है वो देख करके सकल सूरत से ही वो बतला देंगे। तुम्हारे एक विचार को टटोल करके देखेंगे, एक हड़िया में एक चावल पक गया कि नहीं, एक पक गया तो सब, और एक कच्चा है तो अभी कच्चा है, और ये इसमें ये गड़बड़ी है बतला देंगे वो सब। इसलिए गुरु जी को मर्त बुद्धि कभी मत देखो, भले ही वो मध्यम अधिकारी के हों, जैसे भी हों उनके प्रति ऐसा। कर्मी अपने गुरु को भगवत स्वरूप मानता है, तो हम अपने गुरु को जो भक्तिमान है उनको सर्वज्ञ नहीं मानेंगे? जरूर मानना चाहिए, नहीं तो परमार्थी सिद्धि नहीं। जीव गोस्वामी ने बतलाया है आगे चल करके भक्ति संदर्भ में, पहले जो गुरु कर लिया जाता है लोक समाज को देख करके वो व्यवहारिक गुरुकरण होता है ना, व्यवहारिक। जब आगे ऊपर उठ जाए और श्रवण करते करते उसको ये विचार हो जाए, अरे ये तो व्यवहारिक गुरु है, लौकिक गुरु है, परमार्थिक गुरु नहीं है, तो उसको क्या करना चाहिए? क्या करेगा? उनको प्रणाम करके कहेगा, उनको यथायोग्य सम्मान देते हुए परमार्थिक गुरु करेगा। और यदि परमार्थिक गुरु नहीं करेगा तो उसका परमार्थ नहीं होगा। इसलिए ये सब का गुरुओं का स्तर विचार ये सब भक्ति संदर्भ में उन्होंने ये सब किया। यहाँ पर गुरु सुश्रूषणम है, गुरु से मंत्र दीक्षा लेना है, वहां पर ये सब बतलाया है। तो गुरु के आदेश को उल्लंघन ये जीव गोस्वामी कदापि नहीं कर सकते थे, इसलिए पूर्व देश की चले, माने वहां से तब पूर्व में चले गए और जहाँ पर नंदगांव है गाँव, यहाँ पर कि उनको कुबेर के दूतों ने, कुबेर के ना किसके, उनके दूतों ने उनको पकड़ लिया था नंद बाबा को, वहां पर चले गए और क्रोकोडाइल मैंने क्या मगर के गुफे में जाकर के वहीं पर रहते थे, मगर रहते थे सब। अभी कुछ दिन पहले तक वहां रहते थे, अब सब नहीं है। वहीं पर खंदरी में चले जाते बैठ करके, वहीं पर अकेले निर्जन रोया करते, भजन मैंने क्या, बस गुरु जी का स्मरण करके रोया करते, उनके स्नेह से मैं वंचित हो गया, रोया करते, खाना पीना छोड़ दिया, दुर्बल हो गए। कुछ दिनों में चमड़े पर परत पड़ गई और एकदम रुग्ण बन गए। सनातन गोस्वामी 15-20 दिन के बाद में उस स्थान पर घूमते घामते आए, लोगों ने कहा कि बाबा अरे हम लोग तो तुमको बड़ा भजनानंदी समझते, किंतु तुमसे भी भजनानंदी हमारे गांव में एक छोटा सा लड़का आया है, दिन रात राधे कृष्ण कहता है, रोता है और कुछ नहीं देने पर भी नहीं खाता है, कभी सोता नहीं, दिन रात उसी में लगा रहता है, ऐसा तो हमने कहीं नहीं देखा। समझ गए जैसे यही जीव होगा, वो खोज भी रहे थे, इसलिए जी गोस्वामी के पास ले गए तो जीव रोने लगे, ये भी रोने लगे। इसके बाद में लौट आए, रूप गोस्वामी के पास ले गए, पूछा जी जीवों के प्रति गुरु का क्या कर्तव्य है, वैष्णवों का संतों का क्या कर्तव्य है, वैष्णव लोग हैं उनका क्या कर्तव्य है, उन्होंने जीवे दया, जीवों के प्रति दया कर, तो आपने ऐसे सुलक्षण युक्त शिष्य को आपने प्रत्यक्ष क्यों कर दिया,
जीवे दया तो परम धर्म, जीवे
दया आप जीव के प्रति दया करना चाहिए, परम धर्म है, और उसको आपने दूर कर दिया, दोष है तो उसका संशोधन कर लेना चाहिए। मैं आदेश देता हूं उसे जल्दी से बुलाओ, ये सुनते ही रूप गोस्वामी उसके लिए रोने लग गए, बहुत स्नेह करते थे, बस सनातन गोस्वामी उनको ले आकर के और उनकी गोदी में बैठा दिया। अब गुरु शिष्य दोनों मिलकर के खूब रोए। इसके बाद में जी सनातन रूप गोस्वामी ने उनका उपचार करवाया, बड़े बड़े वैद्यों को मथुरा से दिखलाया और धीरे 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 स्वस्थ होने लगे। जब स्वस्थ होने लगे समस्त ग्रंथों को जी गोस्वामी को दिया, संशोधन करो और देखो। इस तरह से जी गोस्वामी को स्नेह के साथ में अपने पास में रखा राधा दामोदर मंदिर। थोड़े दिनों के बाद में गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने रूप गोस्वामी ने महाप्रभु से प्रयाग में जो कुछ सुना था और सनातन गोस्वामी ने सुना था काशी में, संबंध अविधेय प्रयोजन तत्व के संबंध में, जीवों का क्या संबंध है भगवान उसके साथ में या इस जगत में, इस जगत से जीव का हमारा कितने दिनों का संबंध है, पहले तो ये बात, कितने दिन का संबंध है, हम घर बांध बना रहे हैं कितने दिनों के लिए, विवाह कर रहे हैं कितने दिन के लिए, लड़कों के साथ में उनके लिए संपत्ति की व्यवस्था कर रहे हैं कितने दिनों के लिए, ये संबंध अनित्य है। कृष्ण के साथ ही संबंध हमारा नित्य है, ये बदल जाएंगे हर जन्म में, वो नहीं बदलेंगे। जीवात्मा का स्वरूप नित्य कृष्णदास है, वेदांत में समस्त शास्त्रों में भागवत में सर्वत्र ऐसा ही बतलाया गया है। इसलिए इसके संबंध में जो कुछ सुना, जीवों का जो कर्तव्य अविधेय और अविधेय का क्या तात्पर्य है, पर्यवसित प्रयोजन तत्व में होता है, प्रयोजन कृष्ण प्रेम है। कृष्ण प्रेम कहने से यहां कृष्ण ही एक मत समझ लो, कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो प्रेम हमारा तो कृष्ण के प्रति चार प्रकार पांच प्रकार का प्रेम होता है, शांत दास सख्य वात्सल्य और मधुर स्थायी भवाने। ये इन प्रेमों में से मधुर रस ही सबसे जीवों के लिए मूल प्रयोजन है, ये सब बतलाया दोनों जगहों में, सनातन गोस्वामी को वैधि भक्ति और रूप गोस्वामी को राधानुगा भक्ति बतलाया। और गोपाल भट्ट गोस्वामी ने इन लोगों से ये सब सुना, सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी से, वो भी इनको शिक्षा गुरु मानते थे रूप सनातन को, और इनको शिक्षा मिली थी अपने चाचा से और प्रबोधानंद से, व्याकरण इत्यादि समस्त शास्त्र रस ग्रंथ तत्व सिद्धांत सब उनसे सीख करके प्रेम तत्व और ये सब चीजें इन लोगों से सीखा रूप सनातन से, और बाकी उनसे सीखा। गोपाल भट्ट जी संबंध अविधे अप्रयोजन के विषय में वृद्ध वैष्णवाचार्य मध्वाचार्य इत्यादि रामानुज और उन लोगों के संप्रदाय में जो थे उन लोगों से जो कुछ ग्रंथों के माध्यम से चयन किया, किंतु चयन किया था किसी विषय के रूप में नहीं, इधर उधर थोड़ा सा नोटबुक जैसा, वही जी गोस्वामी ने इनसे पढ़ा। किससे? गोपाल भट्ट गोस्वामी से। ये उम्र में बड़े थे और पहले से ही विद्वान आदमी थे, व्याकरण के भी मैंने ये लोग अद्भुत विद्वान थे। छह गोस्वामी उनसे पढ़ा और उनके नोट को भी ले लिया और नोट को ले करके और उसी का विश्लेषण करके संबंध अभिधेय प्रयोजन तीन रूपों में उसको बांटा और बांट करके फिर संबंध में उन्होंने नोट को करके और उसको बृहत किया और रूप सनातन के विचारों को लेकर के भी उसमें बृहत भगवतामृत का विचार, भक्ति गोस्वामी सिंधु का, उज्जल लीन मणि का और उनके समस्त ग्रंथों का विचार लेकर के सबसे पहले संदर्भ की रचना की। संदर्भ माने होता है पेटिका, माने कोई अमूल्य रत्नों की जो पेटी होती है उसको कहते हैं संदर्भ। उनमें पहला जो चार संदर्भ है, तत्व, भगवत,
परमात्मा
और कृष्ण संदर्भ, ये चार संबंध में, चार तत्व में संबंध ज्ञान का विचार। जीव क्या तत्व है, जगत क्या तत्व है, माया क्या तत्व है, जीव का प्रयोजन क्या है, ये सब जितने संबंध तत्व हैं, इसका ये चार संदर्भों में दिया। तत्व संदर्भ में प्रमाण प्रमेय का विचार किया। प्रमाण माने क्या? किसी भी बात के लिए हम जो सुनेंगे तो किसके बात को हम प्रमाणिक मानेंगे। एक लड़का आया और कहा, छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ है, होली गेट में आग लग गई और वो जल गया। इतने में एक कोई वृद्ध सज्जन आए यहाँ, उन्होंने कहा कि एक चाय के दुकान में थोड़ी सी आग लग रही थी तो वो उसकी थोड़ा चाय की दुकान में थोड़ा सा वो जल गया, उसको बुझा दिया, कोई बात नहीं है। अब किसकी बात मानी जाए? उस बच्चे की बात माने ना वो जो पीछे से जो आदमी प्रौढ़ आया उसकी बात मानी जाएगी? जो पीछे से आया और अधिक उम्र का विचारशील मालूम पड़ा उसकी बात तो विचार करेंगे। इसी तरह से बहुत तरह की बातें, ये संसार सत्य है, ये हम मनुष्य हैं, ब्राह्मण है, ये सत्य है, ये मेरा घर है, ये मेरे बाप और वंशधरों की जमीन का मैं अब मालिक हूं, इसके लिए मैं प्राण भी दे दूंगा किंतु एक इतनी भी इंच जमीन नहीं छोड़ूंगा या संपत्ति नहीं छोड़ूंगा। एक तो ऐसा कहा, इसके लिए मामला मुकदमा मारा मारी लड़ाई झगड़ा सब करूंगा। एक आदमी ये कहा, एक आदमी कह रहा है भाई ये अमित चीजें इसके लिए न करके तुम कुछ आत्मा के लिए, भगवान के लिए कुछ करो, वो स्थाई चीज है, ये सब मत करो। अब दोनों की बातों में किसकी बात सुनो? ये जी गोस्वामी ने विचार किया जो हम भगवान के संबंध में, जीवात्मा के संबंध में, संसार के संबंध में, उनके साथ में जो संबंध है, इसके संबंध में जो प्रमाणिक बात है, किसकी बात पर हम विश्वास करें और न करें। जी गोस्वामी ने कहा वेद के ऊपर में तुम निर्भर कर सकते, वेद की प्रमाण ही, शब्द ही एकमात्र प्रमाण है और कोई भी प्रमाण प्रमाण नहीं। जो देखते हैं वो भी भूल हो सकता है किंतु वेद की बात झूठी नहीं हो सकती। पैखाना पैखाना है वो अपवित्र है, चाहे किसी का भी पैखाना, कुकर का पैखाना है, गधे का पैखाना है, सुअर का पैखाना है, आदमी का पैखाना, जितना ही आदमी श्रेष्ठ होता जाएगा उसका पैखाना और गंदा होता जाएगा। सबसे खराब पैखानों में से सबसे पैखाना किसका है? मनुष्य का। और लोग तो घास फास खा करके टट्टी करते हैं, और मनुष्य अच्छी अच्छी चीजों को राबड़ी खुआ खा करके ऐसा गंदा करता है कि उसके दुर्गंध के मारे रहा नहीं जाएगा सबसे पवित्र। किंतु शास्त्र कहते हैं कि भाई पैखाना होने पर भी गोबर जो है बहुत मूल्यवान और महापवित्र है, अपवित्र होते हुए यदि कोई छू दे इसको पवित्र बन जाएगा। गोमूत्र बहुत ही पवित्र, शंख हाड़ अपवित्र होते हैं किंतु। अब लोगों ने इसका अनुसंधान किया, देखा जी सचमुच में किरासन का तेल ले लो, नहीं जा रहा, गोबर ले लो और थोड़ा सा मल लो, क्या होगा? इसी तरह से जितनी भी अपवित्रता हो गोबर दूर कर देता है। ये वेद में लिखा क्यों? भगवान के द्वारा ये वेद बना हुआ, किसी पुरुष के द्वारा इसका निर्माण नहीं हुआ। जो विश्व की सृष्टि करने वाले हैं उन्होंने, उनसे ये वेद पैदा हुआ उनके नाक के श्वास, इसलिए भगवान के द्वारा जो कुछ भी निकला है वो प्रमाणित है। अब भगवान के निश्वास से निकला वेद और गीता निकली, अब दोनों में कौन अधिक प्रमाणित होगी? मुख वाला, उनकी वाणी है इसलिए ये। और इसीलिए कहते हैं कि जितने भी प्रमाण है उसमें शब्द प्रमाण, इसके अनुगत यदि प्रत्यक्ष अनुमान इत्यादि हो, ऐतिह्य आर्ष